Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakshanta Vastal Mimatao Isnimi Veno Atm Sarubandhu Taittiriya Aranviko की तैतरीय उपनिषद के माध्यम से प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत व्याख्याकार जिन्होंने हिंदी टीका की वह मंगलाचरण करते हुए संकेत करते हैं कि यही रिवे गुरभी पूर्वम पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदांता तान नित्यम प्रणतोष्म्यहम्। संकेत उन्होंने किया कि पूर्व काल में, अर्थात जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई और सृष्टि के प्रारंभ में ही जिस परमात्मा ने उस सृष्टिकर्ता को ज्ञान दिया, प्रहरण करके शब्द कर दिया माने ज्ञान भी दिया साथ, और जिसने ज्ञान दिया और जो ज्ञान अभिन्न रूप से रहने वाला, उसकी सत्ता के साथ में ज्ञान की अभिन्नता, ऐसा नहीं कि सत्ता अलग हो और ज्ञान अलग, जहां उसकी सत्ता है वहां ज्ञान भी विद्यमान, ये संकेत किया। ऐसा करके फिर वहां से प्रवाह चला और प्रवाह का क्रम भी आपने उपनिषदों में सुना है। उपनिषदों के अंतर्गत चर्चा आती है कि उस ब्रह्मा ने, सृष्टिकर्ता ने उस ज्ञान को आगे प्रवाहित कैसे किया, तो वह आपने सुना है कि ब्रह्मा ने, प्रजापति ने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ये संकेत दिया। किसको उस ज्ञान को कहा, तो संकेत किया कि अथर्वा को, और वो क्या है, ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम पुत्र। ऐसे उस अथर्वा को उन्होंने वहां पर जो है वो ज्ञान, अब उस ज्ञान में कोई शर्त नहीं है, ध्यान रखना, वहां पर जो ज्ञान का प्रवाह हुआ उस ज्ञान में नियम या कोई शर्त नहीं, सीधे सीधे जो है ब्रह्मा से वह ज्ञान किसमें आया, कहा अथर्वा में आया। आगे चल करके जहां सत्यवाय भारद्वाज आए प्राह और सौनक, तो सौनक जहां पर आए हैं वहां से नियम चला, तो वहां तो कहा विधिवत उपसन्न, विधि के अनुसार वो वहां पर आचार्य के पास जाते हैं, और विधि के अंदर तो विधि क्या है, तो समित पाणियम सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, इस विधि का प्रारंभ वहां से हुआ। उससे पूर्व में जो क्रम आया है अथर्वा ने भी आगे प्रवाह बढ़ाया, तो वहां पर ऋषियों को वो ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ, ये चर्चा आई। लेकिन आगे चल करके सौनक से जो है क्या है, वहां नियम विधि की चर्चा आई, उससे पहले कोई विधि और कोई नियम क्यों, तो वेद ही ज्ञान है, और उस ज्ञान में भी फिर आगे चल करके विधि जो की गई, और आगे भी कहते विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन, जहां अधिकारी की, वेदांत के अधिकारी की चर्चा की, वेदांत का अधिकारी कौन है, तो वहां यही संकेत किया विधिवद अधीत है ना, वेद वेदांगत्वेन, और अधिगत आपाततः, और उसके अर्थ को उसने अच्छी तरह से जान लिया। फिर उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषः है ना, निर्मल स्वांतः वेदांतस्य अधिकारी, ये चर्चा की, तो वेदांत के अधिकारी की बात की, लेकिन उससे पूर्व में कोई वहां अधिकारी की बात नहीं की, सीधे सीधे ज्ञान आया। क्या मतलब इसका, इसका सीधा सा मतलब है वहां पर जो शब्द दिया है अथर्व, तो देखो हमारे वेद को लेकर के पहले उसमें विभाग नहीं, वेद के विभाग तो बाद में हुए, पहले तो वेद सीधा था, क्या था, ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान और जो सत्तात्मक ज्ञान, लेकिन आगे जो है विभाग किए गए, तो विवाह करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर बात की कि बूंद परत जिमे ढावर पानी और तिमे जीवे माया, ये संकेत किया। क्योंकि जैसे राजस्थान में आप देखते हो वर्षा होती है, नदी प्रवाहित होती है, लेकिन नदी का प्रवाह प्रारंभ में तो दिखाई देता है और फिर वो प्रवाह गायब, क्योंकि बालुका अधिक है, तो बालुका में वह प्रवाह ही उसका गायब हो जाता है, माने चारों तरफ फैल जाती है, तो नदी का स्वरूप ही नहीं रह जाता। अब वहां पर क्या करना चाहिए? तो नदी के लिए फिर खुदाई करनी पड़ेगी, तो ये नियम आएगा तब नदी नदी रहेगी। इसी प्रकार से यहां पर भी संकेत किया कि जब प्रवाह होता है तो प्रवाह के अंतर्गत उस पृथ्वी की स्थिति को लेकर के आया, हृदय की स्थिति को लेकर के, अंतःकरण की जीव की स्थिति को लेकर के, वह ज्ञान जो है वो फैल जाता। और जब ज्ञान फैल जाता है तो ज्ञान का जो नदी रूप से स्वरूप, एक सरथा रूप से स्वरूप होना चाहिए, वो रह पाता नहीं, ठीक है। इसलिए फिर वहां नियम की आवश्यकता पड़ती, ये सब चर्चा। तो अब जो है ऐसा जब आया, इसी को गीता में भगवान ने कहा सकाले नेह महता योगो नष्ट पर, जिस योग को मैंने वैवस्वात आदि से कहा, इच्छा को आदि से फिर कहा गया, वही मैं तेरे लिए कह रहा, कोई वो नवीन नहीं है, वस्तु वही है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उसमें लुप्त प्रायता आ गई, इसलिए उसको पुनः जो है उद्घाटित करने के लिए, उन्हें उसको पुनः प्रस्थापित करने के लिए, और हम इस योग को तेरे से कह रहा, ये चर्चा की। ठीक यही क्यों, जिसे हम जीव कहते हैं तो जीव है क्या? तो अविद्या से उपहित का नाम ही जीव है, अंतःकरण की उपाधि से उपहित का नाम जीव है, और जब जीव है तो अविद्या होने के कारण उसमें प्रमाद होना भी स्वाभाविक, क्योंकि अविद्या ही विस्मृति रूप है, इसलिए वहां प्रमाद की स्थिति होने के कारण प्रमाद वसात वह जो क्रम था योग का वो समाप्त हो जाता, इसलिए क्रम सुचारू रूप से बना रहे तब उसके लिए नियमों का पालन करना, और नियमों में भी फिर जो है उसको व्यवस्था देनी होती। तो इसलिए जो है जब उस वेद के अर्थात ज्ञान के स्वरूप को सीधा सीधा हम प्राप्त नहीं कर सके, तब उसमें भाग कर दिए गए। क्या कर दिए गए? भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद, ये चार वेद किए। इन चारों वेदों को करके तो ऋक् ऋचाओं से उपलक्षित जो है उसका नाम है ऋग्वेद, और यजुर्ऋचाएं माने कर्म परक ऋचाएं, उपासना परक ऋचाओं से उपलक्षित जो है वो क्या है? तो यजुर्वेद। और जहां पर उद्गीत, उक्त या जो है शांति का परचायक, उपासना के पश्चात, कर्म के पश्चात क्या होता है? आपको एक प्रसन्नता, एक शांति प्राप्त होती है, और जहां शांति होती है, जहां प्रसन्नता होती है, तो आपका हृदय में जो आनंद है वो उल्लसित होकर के और बाहर निकल पड़ता, गीत बन जाता। इसलिए वेद जो सामवेद है उक्त प्रधान है, गीत प्रधान है, शांति का परचायक, इसके लिए उसका नाम ही रखा गया साम। आगे संकेत किया अथर्ववेद, तो ये क्या है? अभेदात्मक ऋचाओं से उपलक्षित जो है उसका नाम है अथर्ववेद। अर्थात अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? न थर्व इति अथर्व, जहां थर्व नहीं है, और जहां थर्व नहीं है उसे क्या कहोगे? अथर्व। थर्व क्या है? थर्व का नाम है छिपाव, कपट। थर्व का नाम क्या है? छिपाव या कपट। तो जहां पर किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का कपट नहीं है, तो वहां पर क्या है? वहां पर वो ज्ञान, जब छिपाव नहीं, कपट नहीं, कोई अवरोध नहीं, तो वो ज्ञान कैसा होगा? सीधा सीधा। जब सूर्य का प्रकाश आता है और खुला हुआ आकाश है, तो वहां तो सीधा सीधा प्रकाश होता, वहां कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन यदि वहीं पर हमने दीवारें बना दी, कमरा बना दिया, तो कमरे में प्रकाश कैसे आएगा? विंडो से आएगा, है झरोखों से आएगा, तो सीधा सीधा नहीं आ पाएगा, तो क्योंकि वहां दीवारों का की प्रतिबंधता आ गई। ठीक इसी प्रकार से वहां जो अथर्व, जहां कोई छिपाव नहीं, तो अथर्वा शब्द का भी अर्थ क्या है, जहां किसी प्रकार की थर्वता नहीं है, जहां किसी प्रकार का छिपाव नहीं है, कोई अवरोध जहां नहीं, तो वहां तो ज्ञान सीधा सीधा आया। लेकिन आगे जब अंतःकरण की उपाधियां बन गई तो क्या हुआ, तब ज्ञान तो आया लेकिन वो ज्ञान फिर झरोकों से होकर के आता, कहीं बुद्धि के मन के आदि है, झरोकों से होकर के आता, इंद्रिय आदियों से होता हुआ। इसलिए उस ज्ञान में हमें क्या दिखाती, जैसे प्रकाश में अल्पता दिखाई देती, उसमें व्यापकता दिखाई नहीं दे, ऐसे ही हमारे में भी जो ज्ञान है वो भी कैसा दिखाई देता, अल्प। तो हम कहते हैं है? अल्पज्ञ है, ज्ञान से जो अवच्छिन्न है वो क्या है, जीव है ना। और सर्वज्ञ तो ज्ञान विशिष्ट जो है वो का वो परमात्मा, ये सब कल्पनाएं होती। तो यहां विभाग चलते रहते फिर। लेकिन वेदांत क्या बतलाता, वेदांत कहता है कि जहां पर कोई भाग नहीं, जहां कोई विभाग नहीं, उसका नाम क्या है, वेदांत। मन जो सिद्धांत है, अर्थात जहां पर किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, जो चारों तरफ आप्यायित हो रहा है, उसका नाम है वेदांत। तो ऐसे वेदांत का व्याख्यान किया, कब किया, तो पूर्व शब्द का प्रयोग किया, पूर्व ऋषियों ने, तो वो क्रम से आया। इसलिए आप बोलते भी हो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम गोविंद योगींद्र, ये सब परंपरा भी गिनाते हो, है ना। तो अब जो है वहां तक जो है जब ज्ञान आया ब्रह्मा से लेकर के और जो है अथर्वा सत्यवा आदि भारद्वाज आदि तक, तो वहां तक कोई नियम नहीं, वहां तक वह वेदांत सीधा का सीधा आया, वह ज्ञान सीधा का सीधा आया। लेकिन आगे चल करके सौनक ऋषि से जब परंपरा आई तो वहां से फिर जो है परंपरा बदलने लगी, अर्थात वहां विधि का नियम का जो है रूप प्रस्तुत किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि वहां पर जो है अवरोध आ गया, ये सब संकेत किया। तो वही संकेत किए पूर्व शब्द से, अब सौनक आदि जो ऋषि हैं उन्हें भी ग्रहण करेंगे और उससे पूर्व जो हैं ऋषि उन्हें भी ग्रहण करेंगे। अब जहां प्रकाश सीधा सीधा आता है तो वो जो होगा कैसा प्रकाश होगा, वो व्यापक प्रकाश होगा, विशुद्ध प्रकाश होगा, उस प्रकाश में कोई नूनच करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे उन पूर्व के ऋषियों को द्वारा और जिन्होंने उसके पश्चात ग्रहण किया, तो प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया। कैसे किया, प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया, पद के बल पर ग्रहण किया, वाक्य के बल पर ग्रहण किया। तो जिन्होंने पद वाक्य और प्रमाणों के बल पर ग्रहण किया, ऐसे उन ऋषियों ने भी वही ज्ञान ग्रहण किया जो पूर्व में जो है वगैरह उसके सीधे सीधे उन्होंने ग्रहण किया था, उसी ज्ञान को उन्होंने भी ग्रहण किया। ऐसा जो वेदांत, ऐसे उस वेदांत को ही उन्होंने संकेत किया कि मैंने पूर्व से सुना। अब थोड़ी सी चर्चा करने बात आ गई तो ऋग्वेद के अंतर्गत जितनी भी ऋचाएं हैं वो सारी ऋचाएं किसका प्रतीक है, तो बतलाया जाता है कि समस्त ऋचाएं स्तुति परक है। ऋग्वेद में जितनी भी ऋचाएं हैं वो कैसी है, स्तुति परक है। और यजुर्वेद में जो ऋचाएं हैं वो कर्म परक है, और सामवेद में तो है बिल्कुल प्योर कहते निखालिस क्या है, उपासना परक, ठीक है। और अथर्ववेद में जो है वो ऋचाएं कैसी हैं, तो कहा ज्ञान परक है या अभेद परक है, अभेद की परचाय का ज्ञान परक, ये संकेत किया। अब देखो स्तुति की चर्चा आई, स्तुति क्या है तो आप सब जानते हो, स्तुति का मतलब ही होता है हम जिसकी स्तुति करते हैं उसकी महिमा का बखान करते हैं। परमात्मा की स्तुति करते हो तो कहते हो करुणा वरणालय है, दीन बंधु है, सृष्टा है, हैं वो ही क्या है, पालन करता है, लय करता है, सारे धर्म उसमें हम आरोपित कर रहे और फिर उससे हम चाहते हैं उन्हीं धर्मों को, ठीक है ना। तो स्तुति का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना माने अर्थना चाहना, उससे हम कुछ चाहते हैं और जिससे चाहते हैं तो उसके सम्मुख होना पड़ता और सम्मुख होकर के उसकी प्रशंसा करनी पड़ती। तो ऋग्वेद जो है वो किसका परिचायक है? स्तुति का परिचायक। तो ये समझ लो, तो हम उसके सम्मुख कब हो पाएंगे? तो सम्मुख होने के लिए यदि वो कहीं दूर है तो क्या करना पड़ेगा? हमें चल करके जाना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये ऋग्वेद हो गया किसका प्रतीक? स्तुति का प्रतीक, यह चलने का प्रतीक, परमात्मा की तरफ जाना, उस सिद्धांत की तरफ जाना। ये क्या हो गया? ये चलना हमें सिखाता है कौन? ऋग्वेद। इसका मतलब क्या हुआ? चलना हमें सिखाता है ऋग्वेद। और चलकर के हम वहां पहुंच गए तो वहां पर अब हमें जो प्राप्त करना है तो उसके लिए हम उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और फिर कुछ न कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। वाणी से उच्चारण करेंगे तो ये कर्म ही तो होगा, तो कर्म करना पड़ता। तो कर्म का प्रतीक कौन हो गया? यजुर्वेद। अब चलना किससे होगा? तो पैरों से। चलना किससे होगा? पैरों से। और कर्म किससे होगा? तो हाथों से, गले से, है ऊपर धड़ से ही, मान लो पूरे धड़ से क्या होगा? का कर्म होगा, है ना। और अब जब हमने कर्म कर लिया और उससे प्रसन्नता प्राप्त हुई और प्रसन्नता प्राप्त हुई, हृदय उल्लसित हुआ, तो जब हृदय में उल्लास आएगा और वो उल्लास जब फूट करके निकलेगा, वो आनंद जब फूट करके निकलेगा तो कहां से निकलेगा? गले से, मुख से, कंठ से, है ना। तो आगे जो है शांति का परिचायक जो है कौन है? सामवेद। तो गले का तो इसका मतलब हुआ कि पैर से चलना, शरीर से कर्म करना और अपने हृदय में जो उस कर्म करके हमें जो फल मिला है या जो शांति मिली है उसको जो है अपने गले के द्वारा जो है क्या करना? प्रकट करना। उसका नाम है सामवेद, वो शांति का परिचायक। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैरों का प्रतीक हो गया ऋग्वेद, ऐसे समझ लो। और हमारे धड़ का प्रतीक हो गया यजुर्वेद और गले का प्रतीक हो गया सामवेद। और आगे इन सारे पर जो है कंट्रोल करने वाला आपका सिर, मस्तिष्क, और वो सबके साथ अभेद रखने वाला। क्या है? अभेद। तो वो सिरस्थानी, सर्वश्रेष्ठ, ऊर्ध्व है, तो वो जो है अभेद का परिचायक। तो अथर्ववेद में सबका अभेद कहां होगा? काया। तो वो अभेद का प्रतीक। तो अथर्ववेद किसका है? सिर का प्रतीक। तो अब बताओ वेद का सारा स्वरूप कहां आ गया? शरीर। तो समस्त जो है ये संसार भी ऐसे ही क्या है? का वेद रूप है। यही तो वेदांत बता ला। वेदांत का मतलब है जो एक सत्ता का प्रतिपादन करने वाला। तो सारी सत्ता किसकी हो गई? उसी की हो गई, उससे भिन्न तो कोई सत्ता हुई नहीं, है ना। इसी को दृष्टांत देकर के लोग समझाते हैं कि एक कोई संभ्रांत व्यक्ति थे, उनका बड़े बड़े शहरों में सर्वत्र बढ़िया अच्छा बिजनेस भी चल रहा था और वो बड़े धर्मशील, नीतिवान, निपुण व्यक्ति थे। चार उनके बच्चे थे और चारों बच्चे भी उनके अनुयायी थे, उनके अनुकूल चलने वाले थे। तो अब जो है वो आनंद से रहते थे और पूरी तरह से सारे साधन उनके पास थे। उनके मन में विचार आया, अब मेरी वृद्धावस्था आ गई और हो सकता है कभी न कभी मुझे जाना होगा, इसलिए ऐसा करूं कि हमारे पास जो साधन है अभी तो सभी आनंद में है, अब ये जो साधन है इन साधनों को ऐसा निहित कर दिया जाए जिससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध आ जाए तो इन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और यदि इसी प्रकार से हम छोड़ देंगे तो ये जो है इसे उच्छृंखलता में बर्बाद भी कर सकते हैं हमारे न होने पर। ऐसा विचार करके उन्होंने जो है स्वर्ण खरीदा और एक स्वर्ण खरीद करके वॉक्स बनवाया और वॉक्स बनवा करके उस वक्स को लेकर के अपने खजाने की एक कोठरी में और 10 फीट गड्ढा खोद करके और उसमें उसको दबा दिया और उसी दीवार पर जो है लिख दिया कि मैंने जो है ये वक्स इतने फुट पर और इस पृथ्वी के नीचे दबाया है जिसमें इतने कुंतल सोना है। ये लिख के छोड़ दिया। अब ये लिख के छोड़ दिया और बंद कर दिया उसको। उसके पश्चात जब उनका समय आने पर शरीरांत हो गया, बच्चों ने उनका जो है यथाविध जो भी संस्कार आदि होता है वो सब किया। उसके पश्चात बच्चे जो है अपना कारभार करने लगे तो धीरे धीरे बिजनेस जो है घाटे की तरफ जाने लगी। जब घाटे की तरफ जाने लगी तो विचार किया कि पिताजी ने संपत्ति तो बहुत थी, कहीं न कहीं जरूर उसको नियत किया होगा, उसको देखा जाए, सारे वही खाते आदि देखे। तो एक खाते में उन्होंने लिख भी रखा था, जैसे वहां दीवार पर लिखा था वैसे खाते में भी लिख दिया। वो उनका जो है खाता देखा तो अमुक कक्ष में और इस प्रकार से इतना जो है सुवर्ण हमने वक्स में इतने फुट पर ये सब लिखा हुआ देख का ठीक है। अब जब देखा तो देख करके कोठरी को खोला, कोठरी को खोल करके उन्होंने जो है खुदाई की। खुदाई की तो वक्स तो मिल गया, वक्स मिल गया है, लेकिन वक्स को खोला तो वक्स खाली निकला। अब विचार करने लगे कि ये वक्स तो खाली है, पिताजी झूठ तो लिखेंगे नहीं, तो सोना कहां गया? तो कल्पना करने लगे किसी ने उड़ा दिया है, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया। इधर जो है बिजनेस धीरे धीरे अधिक घाटे में गई, जहां पर शहरों में उनकी बिजनेसें थी सारे वहां के जो है फैक्ट्रियां आदि भी बिक्री होने लगी और धीरे धीरे इतना हुआ कि उनमें जो उनके बड़े बड़े भाई थे वो भी जाने लगे, छोटा भाई रह गया। इधर जो है बड़ी स्थिति नाजुक हो गई। अब बड़ा दुखी था, दुखी था तो दुखी होकर के बेचारा बैठा हुआ था। इतने में उनके एक मित्र, उन वृद्ध के जो मित्र थे वो कहीं बाहर थे, संयोग से बाहर से उनका आना हुआ और उसके ही यहां आ गए। और आ गए तो उसे दुखी देखा, उसकी सारी स्थिति परिवर्तित देखी, पूछने लगे। पूछा तो उसने सब बताया, कहा पिताजी के पास तो बहुत था, उन्होंने जरूर कुछ न कुछ किया होगा, वो बड़े बुद्धिमान थे। कहने लगे वो तो हमने देखा, वही खाते में इस प्रकार से लिखा था और इस प्रकार से उसको हमने खोजा भी, खोदा भी, लेकिन वो तो खाली निकला। वो वृद्ध थे हैं? तो सो न सवा जा वृद्ध न वृद्ध न तेज पड़े कछ नाई, ते न पड़े जिन साधु न साधित दीह दया न दिपे जिन माई, सो न दया जो धर्म धरे धर और धर्म न जो सो जो बसे छल छाई। तो वृद्ध की बड़ों परिभाषा की, हमारे पूर्वजों को इसलिए जो है वृद्धोपदेश भी माना गया शास्त्रों। अब उन वृद्ध ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने जो लिखा वो गलत नहीं लिखा और सोना किसी ने उड़ाया भी नहीं, तुम्हारा सोना भी मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक काम करना होगा। कहा क्या? एक हथौड़ा और एक छेनी लानी होगी। कहा ठीक, और कल जो है प्रातः काल हम तुमको तुम्हारा सोना प्राप्त करवा दें। उसने कहा ठीक। उसने जाकर के हथौड़ा ले आया, छेनी ले आया। सुबह जैसे हुआ वृद्ध आए, उन्होंने कहा चलो अब वो वक्स कहां है हमको दिखलाओ। ले गए वक्स के पास, जाकर के उन्होंने कहा छेनी इस पर रखो और ऊपर से हथौड़े से चोट मारो। जैसे ही उसने हथौड़े से चोट मारी तो क्या हुआ, वो वक्स ही सोने का बना हुआ था, सोना उसने रखा हुआ नहीं था, लिखा तो था उन्होंने, वक्स ही क्या था, सोना। केवल उस पर स्टील की ऊपर से पॉलिश, उसके रूप को जो है केवल उस पर आरोपित किया गया था, लेकिन वक्स क्या था, सोना ही था। और उसको नाम एक दे दिया गया था, क्या, वक्स। ठीक इसी प्रकार से जैसे ये युक्ति बतलाई वैसे ही शास्त्रों में भी लिखा है, हम लोग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?